समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों और आर्थिक जगत पर भी रहेगी हमारी नजर और उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को भी हम करेंगे याद जिनकी आज है पुण्यतिथि या है जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं मुदिता और मेरे साथ है मेरी को होस्ट शगुन। Shagun, a very good afternoon to you as well.
Good afternoon to you also, Mudita, and a very good afternoon to all the listeners who have tuned into Parikrama on 100.1 FM. I'm Shagun Chopra, and with me today is my co-host, Mudita. And for you, we have a selection of news, our discussion segment, Dateline India, reports, capsules, business, tributes, and much more coming up over the next 30 minutes. So, Mudita, let's give them the headlines first. See. Prime Minister Narendra Modi to begin his two-day visit to Jammu and Kashmir today to launch development projects worth 1,500 crore rupees in the Union Territory.
Tamil Nadu mein zehreeli sharab trasadi mein mritakon ki sankhya badhkar 35 hui. Rajya Sarkar ne shok santapt parivaron ke liye 10-10 lakh rupay ki anugrah rashi ki ghoshna ki, jaanch aayog ka gathan bhi kiya.
Patna High Court scraps Bihar government's decision of increasing reservation for backward classes from 50 to 65%.
Mumbai aur uske upnagaron ke kai hisson mein lagatar varsha jari, idhar rashtriya rajdhani kshetra Delhi mein bhishan garmi se rahat ki sambhavna.
And in T20 World Cup, England beat host West Indies by 8 wickets in St. Lucia. India to take on Afghanistan in Barbados this evening. And our friends, it's time for our segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at national or global level. So listeners, today we will talk about the ongoing preparations of Yoga Day, which is tomorrow, and World Refugee Day.
Shagun, हमारे घर में बड़े बुजुर्गों ने हमें बचपन से एक बात सिखाई है कि पहला सुख निरोगी काया
जी।
और अभी कुछ समय पहले कोविड जैसी महामारी का सामना करने के बाद तो ये बात सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है।
सही कहा आपने।
तो योग न सिर्फ शरीर को बल्कि मन को भी शांत और एकाग्रचित्त करता है। शांत मन से व्यक्ति न केवल अपने बारे में बल्कि समाज के व्यापक हित के लिए भी बेहतर तरीके से काम कर सकता है। सभी देशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10वें संस्करण की तैयारियां चल रही हैं। भारत में भी आयुष मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान योग दिवस के लिए तैयारी कर रहा है।
जैसा कि आपने बताया मुदिता, ये 10वां संस्करण है। तो हम लिसनर्स को बता देते हैं, द थीम फॉर दिस ईयर्स इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इज योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी एंड प्रिपरेशंस आर इन फुल स्विंग अक्रॉस द वर्ल्ड एंड इन इंडिया फॉर इंटरनेशनल योगा डे। And yoga is an ancient practice that originated in India and combines physical postures, which are called asanas, breathing exercises, which are commonly called pranayams, and meditation. Yoga is known for improving flexibility, strength, and balance. It also benefits us mentally, emotionally, and spiritually. So threefold benefits yoga gives us.
बिल्कुल। अमेरिका में भारतीय दूतावास ने कल वाशिंगटन में एक योग सत्र का आयोजन किया। योग की वैश्विक पहुंच और लोकप्रियता पर जोर देते हुए दूतावास में उपराजदूत सुप्रिया रंगनाथन ने कहा कि भारत में अपनी शुरुआत के बाद योग की प्राचीन पद्धति का प्रसार दूर दूर तक हो गया है और आज दुनिया भर में इस विधा के करोड़ों अनुयायी हैं।
Prime Minister Narendra Modi is scheduled to visit Srinagar today, which is June 20, and he will also take part in the International Yoga Day celebrations tomorrow, that is June 21, and this will be his first visit to Jammu and Kashmir since taking charge as the Prime Minister for the third consecutive term. and also listeners, to talk more about it, our West Asia correspondent reports that the United Arab Emirates is set to witness a wave of yoga enthusiasm centered around the theme Yoga for Women Empowerment tomorrow. And there are multiple events which are focused on empowering women through yoga, which are being organized across the Emirates, attracting thousands of participants from diverse nationalities.
जी शगुन, और बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग कल 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में ढाका के मीरपुर इंडोर स्टेडियम में योग दिवस आयोजित करेगा। भारतीय उच्चायोग ने योग दिवस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बांग्लादेश के योग संघों को शामिल किया है। मुख्य कार्यक्रम में कुछ शैक्षणिक संस्थानों सहित बांग्लादेश योग एसोसिएशन, क्वांटम फाउंडेशन, जॉयसन योग, बांग्लादेश योग संघ भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा कार्यक्रम में प्रतिभागियों का स्वागत करेंगे। योग संगठनों, युवा क्लबों और व्यक्तिगत योग प्रेमियों ने कल योग दिवस के लिए विस्तृत योजनाएं बनाई हैं। ढाका, चट्टोग्राम, राजशाही, खुलना, सिलहट और देश के कई अन्य शहर कल योग दिवस कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। शगुन, बांग्लादेश में योग की लोकप्रियता व्यापक है और लगातार बढ़ती जा रही है, और ये स्पष्ट रूप से वहां पर हर आयु वर्ग के लिए और हर जेंडर के लिए स्वस्थ, तनावमुक्त और संतुलित जीवन के लिए पसंदीदा विकल्प बनता जा रहा है।
बिल्कुल बिल्कुल।
तो बांग्लादेश का अनुभव स्पष्ट रूप से दिखाता है कि भाषा, धर्म और संस्कृति की सीमाओं से परे जाकर योग आज दुनिया में सद्भाव और शांति का प्रतीक बनकर खड़ा है।
जी, जैसे कि हम बात कर रहे थे योगा की, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हमने आपको बताया
जी,
तो जो हमारा इंडियन मिशन है दुबई, दे आर मुद्दा यहां पे 4,000 लोग इस रिज्यूमिनेटिंग योगा सेशन को अटेंड करने वाले हैं एट द आइकॉनिक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ऑन सैटरडे। दे इवेंट प्रॉमिसेज टू बी अ ग्रैंड सेलिब्रेशन ऑफ द एंशिएंट इंडियन प्रैक्टिस। And the Consulate of India in Dubai, in collaboration with Ekta Sharjah, is conducting a massive International Day of Yoga event on Sunday. And more than 5,000 participants from various nationalities, they are expected to attend this celebration, which has been held annually in Sharjah since the year 2014. And the Indian Embassy in Abu Dhabi is also coordinating two events. So, बहुत कुछ होने वाला है।
बिल्कुल।
पूरी दुनिया में इसकी celebration बहुत जोरों से होने वाली है। One at ADNIC and another at the iconic Louvre Museum. The Science India Forum and ARYIC are joining forces to conduct an International Yoga Day celebration on Sunday. तो weekly event kind of बन रहा है। The event promises and it will connect a global community of wellness seekers through the power of yoga. और जैसा कि हमने योगा के बारे में हम अपने listeners को बता रहे हैं, योगा इट्स लाइक म्यूजिक, यू नो, म्यूजिक से भी कंपेरिजन इसका कर सकते हैं।
बिल्कुल।
द रिदम ऑफ द बॉडी, द मेलोडी ऑफ द माइंड एंड हार्मनी ऑफ द सोल दैट क्रिएट्स द सिम्फनी ऑफ लाइफ।
क्या बात।
बहुत सारे बेनिफिट्स हैं योगा के।
बिल्कुल है, और अब धीरे धीरे वो नई पीढ़ी भी इसकी तरफ इसीलिए मुड़ रही है। पहले ऐसा कहा जाता था कि शायद उम्र दराज लोगों के लिए वो ज्यादा अच्छा रहता है, पर अब तो उसके फायदे सबको दिख रहे हैं। शगुन, हम सभी अब योगा की तरफ मुड़ चुके हैं कहीं ना कहीं,
अपने बिजी शेड्यूल में से हम सबको टाइम निकालना
चाहिए। और अच्छी बात यह कि आप कहीं भी कभी भी उसको कर सकते हैं, बाकी चीजों की तरह आपको किसी इक्विपमेंट की या किसी और चीज की जरूरत नहीं होती है।
जी,
तो शगुन, आज विश्व शरणार्थी दिवस भी है। निदा फाजली साहब की लाइनें आपने शायद सुनी होंगी शगुन, कि हम वहां हैं जहां कुछ भी नहीं, रस्ता न दयार, अपने ही खोए हुए शाम सहर के हम हैं, गिनतियों में ही गिने जाते हैं हर दौर में हम, हर कलमकार की बेनाम खबर के हम हैं, अपनी मर्जी से कहां अपने सफर के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं।
बहुत खूब।
अपना घर, गली मोहल्ला, दोस्त रिश्तेदार, अपनेपन का वो एहसास और खुशबू, अपने शहर की वो हवा और दरख्त, जो मुझे लगता है जीते जी इंसान भूलता नहीं, लेकिन अचानक ये सब किसी से छिन जाए तो। वैश्विक शरणार्थी संकट हमारे समय की सबसे बड़ी मानवीय चुनौतियों में से एक है। लाखों लोग अलग अलग कारणों से अपना देश छोड़ने को मजबूर हैं। 20 जून को हम विश्व शरणार्थी दिवस मनाते हैं ताकि युद्ध, आपदा या उत्पीड़न के कारण अपना घर छोड़ने को मजबूर लाखों लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके।
एंड लिसनर्स, द ऑफिशियल थीम ऑफ दिस ईयर्स वर्ल्ड रेफ्यूजी डे इज एवरीवन इज वेलकम। This theme highlights the need for global unity in supporting refugees. It envisions a world that accepts and actively embraces refugees, offering inclusion and assistance as they rebuild lives. And this day is dedicated to raise awareness about the plight of refugees worldwide and to promote their inclusion and acceptance in host communities.
बिल्कुल शगुन, और मुझे वो फिर से कुछ एक शेर याद आ रहा है कि दर्द हिजरत के सताए हुए लोगों को कहीं साया दर भी नजर आए तो घर लगता है।
क्या बात है।
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या है खास।
सबसे पहले हम शुरुआत करने वाले हैं मुंबई से। So the 18th Mumbai International Film Festival is underway in Mumbai. The National Competition Jury of MIFF issued a joint statement yesterday with the record-breaking 840 submissions. The MIFF 2024 had 77 films contesting in the national competition. More from our correspondent.
The National Competition Jury of the 18th Mumbai International Film Festival expressed their insights and profound appreciation for the films that competed in the national competition section this year. Through a collective statement, the jury members said that the highlight of their viewing experience was how filmmakers across the board deconstructed the anatomy of patriarchy and portrayed male relationships through a tender lens which was seldom explored. Reading the joint statement, chairperson of the jury and Indian film producer Apoorva Bakshi said that the jury was in awe of the writing strength that forms the background of good cinema.
We, the jury of the National Competition Section, are deeply honored to have witnessed strong, profound, and poignant narratives that are emerging from India. The 77 films that we have watched in the documentary, the short fiction narratives and animation categories over the past 4 days has left us feeling a range of emotions and in awe of the writing strength that is the bedrock of good classic cinema. Themes we deeply resonated include remarkable explorations of relationships with backdrops of rich and diverse landscape amidst the age-old customs followed in India across all socio-economic classes. The highlight of our viewing experience was how filmmakers have deconstructed the anatomy of patriarchy and portrayed male relationships through a tender lens seldom explored.
This year, the best Indian documentary film will receive a silver conch and a cash prize of rupees 5 lakh. Best Indian short fiction film up to 30 minutes will receive a silver conch and a cash prize of rupees 3 lakh. Apart from Apoorva Bakshi, German film producer Adal Filmin, Indian filmmaker Dr. Bobby Barua Sharma, Indian animator Manjul Shroff and German filmmaker Anna Henkel Donnersmarck were a part of the national competition jury. For Parikrama, this is Prarthana from Mumbai.
असम में गुवाहाटी के ऐतिहासिक कामाख्या मंदिर में 4 दिवसीय अंबुबाची मेला शनिवार से शुरू होगा। शहर में पहले से ही देश के विभिन्न हिस्सों से तीर्थयात्रियों और साधुओं का आगमन शुरू हो गया है। आइए सुनते हैं एक रिपोर्ट।
Preparations for Ambubasi Mela in Kamakha Temple in Guwahati city is almost complete as only one day left for the celebration. The city has already witnessed the arrival of pilgrims and sadhus from different parts of the country. The state government and the Kamrup Metropolitan District Administration have made all preparations for the smooth conduct of the festival. According to the Ambubasi Mahayoga Management Committee, the 4-day-long Ambubasi Mela will begin at Ma Kamakha Devalaya with the pravriti at 8:43 a.m. and the door of the temple will be closed till 25th June. On the 26th June, the door will open at 6 a.m. for devotees after snan and nitya puja as per tradition. Unlike previous years, VIP, VVIP passes will not be issued until 30th June due to heavy rush. Moreover, no special tickets will be issued on the 26th and 27th June. It can be mentioned that Ambubasi is celebrated in Kamakha Temple every year during the menstrual course of Goddess Kamakha. Last year, around 25 lakh devotees visited the temple during the Mela. Aminul Haq Jaddar, Akashvani News, Guwahati.
And our friends, on to Tamil Nadu now. The coastal state and the capital can boast of the beautiful Marina Beach, the world's second longest beach. Every picture of a beach brings to our mind the boats, the sea, children playing in the sands and youngsters playing with frisbees. Playing with frisbee is not only a pastime, but also it has become a sport. Do you know that the Indian team has won silver at the Asian Oceanic Ultimate Beach Championship? We have a report.
This is the first time that the National Ultimate Frisbee Mixed Team won silver at the Asian Oceanic Ultimate Beach Championships at Shirahama, Japan. They competed against defending champions, the Philippines, who also won first place in men's and women's categories. Majority of the Indian team is from Chennai. Team coach Alex Sebastian said that the team prepared for nearly 6 months before the event. He said that the beach format has five players on each side. The grass format has seven players to a side. He said that children are selected during their school life and they are given training to learn the skills before reaching college. Sivaraman Venkatesan, the team captain, said that though it was a disappointment for not winning the gold medal, every player is dedicated to the team's victory. He told that more funds are needed to prepare and participate in more tournaments to gain experience. The head coach of the team, Uday Kumar, recalls that the result was disappointing and that teams are dedicated and work hard to bring gold medals to India. Joy, Akashwani, reporting for Parikrama from Chennai.
पश्चिम बंगाल सरकार सुंदरबन में पानी मिट्टी के बढ़ते खारेपन को रोकने के लिए दीर्घकालिक योजना बना रही है। हाल ही में आए चक्रवात और भारी बारिश के कारण नदी का पानी गांवों में घुस गया है, जिसके परिणाम स्वरूप कृषि और मत्स्य पालन में मुश्किलें आ रही हैं। जनजीवन बाधित है। एक रिपोर्ट।
The State Irrigation Department is taking a three-pronged plan to curb this trend. Principal Secretary of the Department, Prabhat Kumar Mishra, said about 700 kilometers of irrigation canals have been desilted to increase freshwater supply from the northern part of Sundarbans. Freshwater shrimp farming is being encouraged instead of brackish water vannamei shrimp. It has been said that proper infrastructure is being created to retain rainwater under the Jaldharo Jalharo project. At the same time, the risk of flooding will be reduced in the coming days through the program that has been taken to create mangroves in the Sundarbans with the financial support of the World Bank. The irrigation secretary expressed hope that it would help to desalt the water in Sundarbans in the long term. He said mangrove saplings are being planted on the earthen embankment of the river in a new way. This will enhance the water holding capacity of that dam in many forms. West Bengal Pollution Control Board WBPCV Chairman Kollan Rudro said, Bengal is India in a microcosm. The rapid melting of Himalayan glaciers at 46 cm per year, increasing sea surface temperature and sea level rise at 7 mm per year have left the state exposed to the worst consequences of climate change. Sri Rudro said, an ordinary resident of the Sundarbans contributes nothing to the world's colossal carbon emission, yet bears the maximum brunt of the climate change. Sushmita Mondol, Akashvani, Kolkata.
And now moving on, listeners, we will take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
On 20th of June 1756, the Nawab of Bengal, Siraj ud-Daula, seized Calcutta to punish the East India Company for the unauthorized construction of fortifications at Fort William. Siraj ud-Daula caught the company unprepared and won the fort, ousting the East India Company army.
The captured prisoners were held in a prison called the Black Hole. It is said that 146 company prisoners were put into a room measuring 18 by 15 feet. However, the victory was only short-lived, as Siraj ud-Daula was defeated by the British in the Battle of Plassey a year later in 1757.
The Battle of Plassey is generally seen as the start of company rule in India and the first major step in the development of the British Empire in India.
We also remember revolutionary freedom fighter Manindranath Banerjee, who died on the 20th of June 1934. He was a close associate of revolutionaries Rajendranath Lahiri and Jitendranath Sanyal.
Manindranath was sentenced to 10 years rigorous imprisonment for attempt to murder of G.N. Banerjee, the notorious deputy superintendent of the CID. During imprisonment in the Fatehgarh Central Jail, Manindra, along with Manmathnath Gupta and Yashpal, went on hunger strikes twice. demanding better treatment for the political prisoners. The second hunger strike badly impaired Manendra's health, and he breathed his last on 20th of June 1934.
We also remembered nationalist Gurnam Singh, a resident of District Ludhiana. Gurnam Singh offered individual satyagraha on the 20th of June 1941, for which he was arrested and jailed for 6 months. After coming out of the prison, Singh participated in the Quit India movement. He was put behind bars and remained in Multan, Firozpur. The brave son of the soil was hanged in the Ludhiana jail in September 1944.
We also remember Kalibai, a girl of only 12 years of age who gave supreme sacrifice on 20th of June 1947. The Maharawal of Dungarpur ordered the state police to close down all schools for Bheels, which the Rajasthan Seva Sangh, Dungarpur, had set up. When Sangha Bhai, a Bheel and a teacher of one such school at Rastapal village, refused to abide by the police superintendent's order on 19th of June 1947, he was badly beaten, tied with a rope to the police truck and dragged on.
Kalibai saw this cruel enactment from the field. She bravely rushed to her teacher's help and cut off the rope from the truck with her sickle. On being fired upon by the state police for this brave act, a critically injured Kalibai died in Dungarpur Hospital on the 20th of June 1947.
And now, listeners, we have business updates for you today. India's equity benchmarks ended positive today. At close, BSE Sensex was up 141 points or 0.18% at 77,479, and the Nifty climbed 51 points or 0.22% at 23,567. And in the forex market, the rupee was trading at 83 rupees and 65 paisa against the US dollar today. At the multi-commodity exchange, gold futures for August contract was trading around 72,040 rupees per 10 grams. Silver futures for July contract was trading around 90,776 rupees per kilogram when reports last came in. And in intraday trade, Brent crude was trading at $85.11 per barrel.
अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल. आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 8 मुकाबले में आज ग्रुप 1 में भारत का सामना अफगानिस्तान से होगा. ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से बारबाडोस में खेला जाएगा. वहीं ग्रुप 2 में आज इंग्लैंड ने मेजबान वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हरा दिया है.
And now talking about Winter Open Tennis, India's Ankita Raina has advanced to the quarterfinals of the WTA Winter Open tournament in Gaiba, Italy last evening. Ankita defeated Irina Bara of Romania 6-2, 2-6 and 6-0 in the women's singles pre-quarters. She will take on Susan Wendici of Switzerland in the quarterfinal tomorrow.
और अब समय है उन व्यक्तित्वों को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिवस. श्रोताओं, आज सबसे पहले हम याद कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत को जिनके बारे में लोग कम जानते हैं. शगुन, ये वाकई अफसोस की बात है मेरे लिए भी कि कुछ दिनों पहले तक मुझे भी इनके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था.
जी, और मुझे भी नहीं बताऊंगा.
बिल्कुल बिल्कुल बताऊंगी मैं. तो आज पुण्यतिथि है एक ऐसी शख्सियत की जिनकी याद में हर साल 20 जून को असम में राभा दिवस मनाया जाता है. असमिया लोगों के बीच कला गुरु के नाम से मशहूर विष्णु प्रसाद राभा बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे. वे एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिनके लिए आजादी का मतलब ब्रिटिश शासन के साथ ही पूंजीवाद, गरीबी और सभी सामाजिक बुराइयों से मुक्ति था. आजादी के बाद उन्होंने कला के क्षेत्र में काम करना जारी रखा। रंगमंच और सिनेमा दोनों के बेहतरीन अभिनेता होने के साथ ही वे एक प्रतिष्ठित फिल्म निर्देशक भी थे और भगवान शिव के मनमोहक तांडव नृत्य के लिए वाराणसी में डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने उन्हें कला गुरु की उपाधि से सम्मानित किया था। शगुन कहते हैं कि आज तक तांडव नृत्य का विष्णु प्रसाद से बेहतर कोई प्रतिभाधक हुआ ही नहीं है। दूसरी ओर शास्त्रीय और लोक संगीत के मिश्रण से उन्होंने असमिया संगीत की एक नई शैली विकसित की जिसे राभा संगीत के नाम से जाना जाता है। तो आइए सुनते हैं भूपेन हजारिका की आवाज में इसी से एक गीत। वे इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन इप्टा की असम शाखा के अध्यक्ष रहे और 1969 में तेजपुर से विधायक भी बने। उनकी किताब बानो कोबांग मानव शास्त्रीय अध्ययन का एक बहुत अच्छा काम माना जाता है। शगुन विश्वास ही नहीं होता कि किसी इंसान के अंदर इतनी प्रतिभाएं एक साथ हो सकती हैं।
एब्सोल्युटली।
तो शत शत नमन है उन्हें और देशवासियों खासकर असम के लोगों को आकाशवाणी परिवार की ओर से राभा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
एंड फ्रेंड्स, टुडे वी आर ऑल्सो रिमेम्बरिंग जैक किल्बी। ही वॉज एन अमेरिकन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड वन ऑफ द इन्वेंटर्स ऑफ द इंटीग्रेटेड सर्किट, अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड ट्रांजिस्टर्स ऑन अ सिंगल माइक्रोचिप। And to talk about some of his honors, he was awarded the National Medal of Science, the Charles Stark Draper Medal, and the National Medal of Technology and Nobel Prize in Physics. He has also been inducted into the National Inventors Hall of Fame.
शगुन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो एक पूरी पीढ़ी की यादों का हिस्सा बन जाती हैं।
सही
1984 में ऐसा ही कुछ घटा था जब दूरदर्शन पर देश का पहला हिंदी धारावाहिक प्रसारित हुआ था। जी हां, मैं बात कर रही हूं हम लोग की। उसकी कहानी और किरदार आज भी हमारी यादों का हिस्सा हैं। उसमें एक किरदार था दादी का जिसे अविस्मरणीय बनाया था सुषमा सेठ ने। उनका आज जन्मदिन है। थिएटर की दुनिया का एक जाना माना नाम थी वो, लेकिन जिस उम्र में कलाकार रिटायर होने के बारे में सोचने लगते हैं उस वक्त उन्होंने टीवी और सिनेमा की दुनिया में पहला कदम रखा था। 42 साल की उम्र में सुषमा सेठ को पहली फिल्म जुनून मिली जो श्याम बेनेगल के निर्देशन में बनी थी, लेकिन हिंदुस्तान के घर घर में उन्हें पहचान मिली हम लोग से।
एंड फ्रेंड्स, टुडे वी आर ऑल्सो रिमेम्बरिंग लॉरेंस एल्बर्ट पेटन। He is an American songwriter, vocal arranger, musician and record producer for the popular Motown quartet, The Four Tops. So let's listen a beautiful song, What is a Man, by his band, The Four Tops.
A man cannot run down the street. A man's not ashamed of what he believes. He knows how.
और हमारे समय के सबसे मशहूर भारतीय लेखकों में शुमार किए जाने वाले विक्रम सेठ का आज जन्मदिन है। शगुन, हम इन्हें इनके लिखे उपन्यासों के लिए जानते हैं, लेकिन उन्होंने अपने लेखन की शुरुआत कविताओं से की थी। पहला उपन्यास द गोल्डन गेट भी कविता शैली में लिखा गया था जिसमें 690 सॉनेट्स थे, लेकिन वे मशहूर हुए 1993 में प्रकाशित अपने उपन्यास अ सूटेबल बॉय से। आपको शगुन ये तो पता है कि भारत के अलावा उन्होंने अमेरिका और इंग्लैंड में भी शिक्षा प्राप्त की है, लेकिन इसके बाद जब वो चीन से पढ़ाई पूरी करके लौट रहे थे तब वो हिचहाइकिंग करके यानी रास्ते में लोगों से लिफ्ट ले लेकर के चीन से भारत लौटे थे। और इस पे उन्होंने अपनी किताब फ्रॉम हेवन लेक में इसकी पूरी कहानी लिखी है।
जी, एंड टू मुदिता टू टेल आवर लिसनर्स मोर अबाउट हिज कलेक्शंस ऑफ पोएट्री, हिज फेमस कलेक्शन ऑफ पोएट्री सच एज मैपिंग्स एंड बीस्टली टेल्स आर वेरी नोटेबल कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज पोएट्री canon. And he has written other several novels and poetry books. He has won several awards such as Padma Shri Sahitya Academy Award, Pravasi Bhartiya Samman and W.H. Smith Literary Award, to name a few. And today, it's also the birthday of Lionel Richie, singer, songwriter, record producer and television personality. He rose to fame in the 1970s as a songwriter and the co-lead singer of the Motown group Commodores. And now, listeners, I will let his music accompany the talking part with this track, Dancing on the Ceiling. और श्रोताओं, आज भारत की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी जन्मदिन है, तो आकाशवाणी परिवार की ओर से उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं.
वेल, हैप्पी बर्थडे टू हर.
अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए मुदिता और शगुन को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की.
नमस्कार.